आप सभी को सुप्रभात और जय सद्गुरुदेव। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा द्वारा आयोजित हिंदी साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम नीतू है और मैंने यह सत्संग एडिसन, न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं। सत्संग अध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है। तो आइए, बिना विलंब किए हम आज के इस सत्संग का आरंभ करते हैं। इस सत्संग में जुड़ने के साथ साथ अपने पूर्ण आध्यात्मिक विकास के लिए आप ब्रीदिंग और मेडिटेशन सेशंस में भी शामिल हो सकते हैं, डेली मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करके। डेली मेडिटेशन सेशन हर सुबह और शाम 7 बजे ईस्टर्न टाइम में इसी जूम लिंक पर आयोजित होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वरवेद ज्ञान का असीम अथाह सागर है। यह ऐसा अद्वितीय सदग्रंथ है जिसमें सद्गुरुदेव ने अपनी चेतन समाधि में प्राप्त ज्ञान की धारा को उड़ेल दिया है और इस ज्ञान के सागर से हर सप्ताह एक मोती चुनकर हम उस पर विशेष चर्चा कर अपने बौद्धिक आधार से समझने का प्रयास करते हैं। आज के सत्संग में हम स्वरवेद ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वरवेद के दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे। हम सभी प्रयास करेंगे स्वरवेद के दोहे अपनी बुद्धि के धरातल से समझने के लिए और सद्गुरुदेव से प्रार्थना भी करेंगे कि हमें यह ज्ञान अपने अनुभव से भी समझ में आने लगे। यह एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, इसलिए कृपया प्रश्न पूछें और अपने विचार शेयर करें जब आज के वक्ता आज के दोहे और इनका अर्थ समझा दें। हमारे आज के वक्ता हैं सद्गुरुदेव के अनन्य शरण सेवावृत शिष्य श्रीरंग जी। श्रीरंग जी हमें निरंतर प्रेरित करते हैं अपने सेवा भाव और ज्ञान से। आए हम सभी स्वरवेद के दिव्य दोहे और उनका विस्तृत भाष्य श्रवण करें। श्रीरंग जी, आपसे निवेदन है कि हमें अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित करें।
कुछ बोलने से पहले मैं सद्गुरु चरणों में प्रार्थना अर्पण करना चाहूँगा और सबसे निवेदन है कि आप आंखें बंद करके प्रार्थना को सुनिए। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहे उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहो। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ममतामयी माता जी, संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज और संत श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में भी नमन, और आप सबको मेरा जय सद्गुरुदेव। तो आज का ये जो दोहा है उस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि कोई एक गुरु भाई या गुरु बहन इस दोहे को पढ़े और उसका भाष्य भी पढ़े।
श्री रंजी राहुल अवस्थे, मैं
जी राहुल
कोशिश
जी।
करता हूं। आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दुमे नहीं दे, बैठे मत मन मत मार के, सुमरे पुरुष विदेह। बिना दृढ़ आसन हुए योग समाधि में स्थिरता एवं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए योग समाधि में आसन दृढ़, स्थिर और शांत होना चाहिए, एवं अडिग और अकंप होकर मन के सारे विषय प्रपंचों को छोड़कर सर्व पार व्यापक पर ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद। जय सतगुरुदेव।
धन्यवाद राहुल जी। तो इस दोहे में स्वामी जी ने साधना में बैठते वक्त आसन किस तरीके का होना चाहिए उसके बारे में चर्चा की है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि किस तरीके का हमारा आसन होना चाहिए, बैठक किस तरीके की होनी चाहिए, ये बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि स्वामी जी ने इसमें लिखा है कि आसन अपना कैसा होना चाहिए, कि स्थिर होना चाहिए। जिस आसन में बैठकर हम ज्यादा देर तक साधना में बैठ पाए और उसमें हमें कोई कठिनाई ना हो, उस तरीके का हमारा आसन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि जो भी सबसे बेस्ट आसन है उसको मैं करूंगा, या फिर ऐसा होता है कि मैं सबसे कठिन आसन है उसको करके फिर मैं साधना में बैठूंगा। तो अगर हम उस तरीके से साधना में साधना करने की कोशिश करेंगे तो उससे होगा ये कि अपना जो पूरा ध्यान है वो उस साधन को मेंटेन करने में या उस पोस्चर को करने में अपना ध्यान उस तरफ चला जाएगा। लेकिन साधना का जो महत्वपूर्ण या फिर अपना जो गोल है साधना का, वो आसन पर ध्यान देना नहीं है। हमारा जो साधना का मुख्य उद्देश्य है वो है कि परमात्मा की हमें परमात्मा का सुमिरन करना है। तो इसीलिए अगर कोई कहता है कि मैं एक पैर पर खड़े होकर साधना करूंगा, तो वो हम जैसे जो सामान्य जनमानस है उनको तो वो संभव नहीं है। कुछ ऐसे महात्मा लोग होते हैं वो इस आसन को करके साधना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हमारा गोल है ही नहीं। हमारा गोल है कि साधना में हम कैसे शांति से और स्थिरता से बैठ पाए। क्योंकि अगर आसन कठिन होगा तो हमारा सारा जो ध्यान है वो परमात्मा के सुमिरन पर नहीं, बट उस आसन को मेंटेन करने में रहेगा। तो इसीलिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आसन हमेशा ही एकदम स्थिर हो, ऐसा इतना हम उसमें इस स्थिरता से बैठ पाए कि जैसे कि एक पुतला हो या स्टैचू हो जाए, उतनी स्थिरता होनी चाहिए। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि आसन स्थिर होना चाहिए और उसमें हमारा जो शरीर है वो हिले ना, क्योंकि हम साधना में जो है, अगर हम प्रथम भूमि की भी बात करें तो उसमें है कि हमें मन को एक एक फोकल पॉइंट पर एकाग्र करना होता है, और उसमें जितना हलचल होगी हमारे शरीर में उतनी ही मन में भी अस्वस्थि निर्माण होगी। तो इसीलिए हमारा जो आसन है वो स्थिर होना बहुत जरूरी है। स्वामी जी आगे लिखते हैं कि आसन से शांति भी मिलनी चाहिए, और जैसे आसन ऐसा हो कि वो सहज हो, जिसके कारण शरीर में कोई पीड़ा ना हो। और वो साधन में आसन जो है वो सहायक बने, वो बाधक ना बने। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि जैसे सिद्धासन को कहा गया है कि वो सबसे अच्छा आसन है साधना के लिए, लेकिन अगर आपका शरीर उस आसन में बैठने के लिए अगर अभी रेडी नहीं है, या फिर आपके शरीर में उससे कोई पीड़ा हो रही है, तो हमें उसके पीछे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अनुभव जो होता है वो साधन से नहीं या आसन से नहीं होता। जब सद्गुरुदेव की कृपा होती है तो फिर आसन कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमें ध्यान जो है पूरा अपनी साधना पर देना है, अपना जो गोल है उसमें कि जो अपना फोकल पॉइंट है उस पर फोकस करना है, तो वही अपना गोल है। तो इसीलिए बेस्ट आसन करना है, उसके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें स्थिरता होनी चाहिए, उसमें आपको साधना में आनंद मिलना चाहिए। अगर साधना में आपको आनंद नहीं आएगा तो आप ज़्यादा देर तक साधना में नहीं बैठ पाएंगे, और अगर साधना में आनंद नहीं आ रहा है तो आपका कंसिस्टेंटली साधना भी नहीं होगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आसन से हमें शांति मिले। और जैसे हम कह रहे थे कि ये तो सद्गुरुदेव की कृपा कृपा का विषय है कि अनुभव हो साधना में, तो इसीलिए आसन पर ध्यान ना दे। और अगर गुरु कृपा होनी है तो वो तो सद्गुरु की कृपा होती है, तो अनुभव चलते फिरते या निद्रा में भी हो सकता है। उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक आसन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो आचरण है और हमारी जो चेतना है वो अगर गुरु के साथ है तो आसन कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये सब सारा चेतना का खेल है। उसमें स्वामी जी कहते ही है कि साधन जब तक हमारे मन के साथ चल रहा है तब तक कोई भक्ति है ही नहीं। तो इसीलिए अगर हमें अगर सच्ची भक्ति करनी है तो वो शरीर का जो आसन है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, हमारी चेतना जो है वो कहाँ पर लगी है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए आसन जब करना हो तो वो सहज हो। स्वामी जी ये भी कहते हैं कि स्थिर हो आसन, क्योंकि हमें ज़्यादा देर तक साधना में बैठना है। तो ऐसा नहीं कि हम साधना में बैठे 5 मिनट और पैर दर्द करने लगे या फिर पीठ दर्द करने लगे, तो उससे साधना में हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और मन को तो छोटा सा कारण ही चाहिए कहीं और भागने के लिए, तो अगर हम शारीरिक पीड़ा वो कारण ना बने, तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं यहाँ पे कि जिस साधन में जिस आसन में आपको आनंद मिले, जिससे आपके शरीर में कोई पीड़ा ना हो, वो आसन करना चाहिए। स्वामी जी ने उस पर दोहा भी लिखा है कि स्वामी जी कहते हैं कि सहज पाल हति मार करवा सिद्धासन साध, स्वस्तिक पद्मासन लगे सुख शव आसन सा राध। तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ पे कि आपको ऐसा आसन करना है जिसकी वजह से आपकी साधना में आपको सहायता मिले। तो स्वामी जी ने ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको सिर्फ पद्मासन में ही बैठना है या फिर सहज पलथ ही मार कर बैठना है या फिर सिद्धासन में बैठना है। स्वामी जी ने तो ये भी लिखा है कि आप सोकर भी साधना कर सकते हो। तो या जैसे आजकल काफी लोगों को नीचे बैठने में तकलीफ होती है, तो उसमें हम कुर्सी पर बैठकर सोफा में बैठकर भी साधना कर सकते हैं। तो सद्गुरुदेव ने इस साधना को इतना सहज और सरल बनाया है कि उसमें आसन की कोई रिक्वायरमेंट स्वामी जी ने नहीं रखी है। स्वामी जी ने कहा है कि अपने शरीर को जिस तरीके से आप सहजता से साधना में बैठ पाए, जो आसन आपको ज़्यादा देर तक साधना में बैठने में सहायक हो, वैसा ही आसन होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं अध्यात्म में हमेशा यही बोला गया है, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, तो वो शरीर के साथ भी है। तो जैसे अपना शरीर साथ देगा, जिस तरीके से अपना शरीर बना है, ये तो प्रारब्धवश बना है, तो ऐसे हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को कोई आसन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आसन आसन कौन सा आसन है ये कहीं मायने नहीं रखता, बस हमारी जो चेतना है वो हमेशा साधना में लगी रहे, वही सबसे बड़ी बात है। और ये जो दोहा हमने देखा कि जिसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि आप कोई भी साधन में बैठे लेटकर भी आप साधना कर सकते हो, तो उसके साथ ये भी एक्चुअली है कि सिर्फ आसन नहीं लेकिन आपको कंसिस्टेंसी होना चाहिए साधना में। तो अगर आप हमेशा साधना में, अगर जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि 10 मिनट की साधना है सुबह और शाम को करनी है, 2 बार कम से कम, 2 बार करनी है कहते हैं स्वामी जी। तो इसमें स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि आप किस पोस्चर में बैठिए। स्वामी जी ने हमेशा यही कहा है कि आपको 10 मिनट की साधना करनी है और सुबह और शाम 2 बार मिनिमम। और ये भी कहा है कि जब साधना में हम बैठे तो वो पूरी श्रद्धा के साथ हो। अगर हम ऐसे कहेंगे कि मुझे आसन पर फोकस करना है, लेकिन मेरी अगर उसमें मेडिटेशन में या साधना में अगर मेरी श्रद्धा नहीं है, तो वो आसन आपको कोई फायदा नहीं देगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज में विश्वास रखते हैं तभी वो चीज फलीभूत हो सकती है। जैसे जो लोग आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, या फिर जिन्होंने देखा है पहले, या फिर जो मॉडर्न अभी मेडिसिन है, उसमें भी एक जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो एक प्लासिबो करके कंसेप्ट होता है। बेसिकली प्लासिबो का मतलब है कि उसमें जो पेशेंट को दवाई दी जाती है उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं, जो सच में जो दवाई होती है उसमें, तो वो उनको दी नहीं जाती। क्योंकि उसमें क्लिनिकल ट्रायल में उनको ये प्रूव करना होता है कि दवाई कितनी इफेक्टिव है। तो इसमें ये है कि जब कोई पेशेंट, और इसलिए वो सेटअप स्टडी का किया जाता है ताकि वो पता चले कि कितने लोगों को सिर्फ ये सोचकर, श्रद्धा की वजह से, या फिर इनका विश्वास है कि मुझे दवाई मिल रही है, और क्योंकि वो क्लिनिकल ट्रायल है इसका मतलब उनके मन में ये है कि ये लेटेस्ट दवाई है, ये सबसे इनोवेटिव दवाई है, तो ये सोचकर ही उनको अच्छा लगता है। और वैसा होता भी है, उसमें कोई दो बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता, बट क्लिनिकल ट्रायल का उनका गोल ये होता है कि वो जो दवाई जो है वो कितनी इफेक्टिव है। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि सिर्फ श्रद्धा होने से लोगों की बीमारी भी ठीक होती है, जबकि उनको सच में दवाई दवाई नहीं मिलती तो वो ठीक हो जाती है। तो इसीलिए जब पुराने समय में जब आयुर्वेदाचार्य होते थे, अगर उनके पास कोई ऐसी व्यक्ति आए जिनको ऐसा लग रहा हो कि मन में कुछ जो विकार है, जो मन में है, वो एक्चुअली शरीर में नहीं है, लेकिन मन को ऐसा लग रहा है कि मुझे वो विकार है, तो उन लोगों को ट्रीट करने के लिए उनको जस्ट पुरी में एक ऐसा ही कुछ, तो जैसे कि कुछ तो 2-3 ऐसी चीजें मिक्स करके दे कि वो एक्चुअली दवाई नहीं है, बट उनके मन के समाधान के लिए वो दी जाती थी। तो इससे आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ श्रद्धा होने से कितना फर्क पड़ता है। जब अगर अपना शरीर ठीक हो सकता है तो फिर साधना में क्यों वो नहीं हो सकता, राइट? सो इसीलिए श्रद्धा होनी जरूरी है। सिर्फ आसन पर हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप आसन से ज्यादा किस भाव से साधना में बैठते हो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अगर मैं ये सोच के चलूँ कि मैं आज 1 घंटा साधना में बैठूंगा और मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक आसन ही करूंगा, लेकिन अगर मेरे मन में वो श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तो उस साधना से कोई मुझे फायदा नहीं होगा। हम सब ये जानते भी है कि जिस तरीके से ये क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोगों ने प्लासिबो के बारे में चर्चा की, तो वैसे ऐसे भी हमने लोग देखे हैं कि जिनको सच में कुछ तो परेशानी होती है, हेल्थ कंडीशन होती है, और वो काफी सारे डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन ऐसे भी डॉक्टरों के पास जाते हैं कि जो बड़े ही अपने उस स्पेशलिटी में बहुत माहिर हैं और काफी लोगों को उनका अच्छा अनुभव आया है। तो ऐसे काफी लोगों के, डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी उनको फायदा नहीं होता, और ये इसलिए होता है क्योंकि उनके मन में हमेशा वो शंका रहती है कि क्या ये डॉक्टर मुझे ठीक कर पाएगा। अगर हम मन में शंका लेकर जाएंगे तो जो शक्ति है वो कार्य नहीं करेगी। उसके लिए हमें रिसेप्टिव होना पड़ेगा, हमें वो सद्गुरुदेव की जो शक्ति है, जो प्रवाह है, उसको अगर हमें उसमें अगर हमें कोई शंका है तो वो हमारे साथ काम नहीं करेगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जब साधना में बैठे तो पूरा पूरा श्रद्धा भाव हो और मन में यही भाव हो कि मैं जब साधना में बैठूंगा तो मुझ मेरे साथ सद्गुरुदेव की शक्ति जो है वो जरूर कार्य करेगी। मुझे उसका एहसास हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मेरी ऐसी परिस्थिति है ही नहीं कि मैं उस शक्ति को कार्य करते हुए देख पाऊं या समझ पाऊं। तो बस हमें ये पूरा विश्वास रखना है कि साधना में मैं बैठूंगा तो ये शक्ति कार्य करेगी और वो सूक्ष्म तरीके से कार्य करती भी है। जब हम अगर हम अपना बहुत ही इनिशियल डेज अगर देख को याद करें तो जब हम हमें प्रथम भूमि की जब साधना साधना सिखाई गई थी तब हमें ये भी कहा गया था कि जब आप ये साधना शुरू करोगे तो आप में जो है वो धीरे धीरे सूक्ष्म तरीके से बदलाव होते जाएंगे। आप उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे लेकिन आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो उसको रियलाइज कर पाएंगे। और ये इस बात सच भी है, आप हाँ, काफी लोगों ने ये रियलाइज भी किया होगा कि जब हम रेगुलरली साधना की शुरुआत करते हैं पूरे श्रद्धा के साथ तो हमें वैसे कुछ वैसे महसूस नहीं होता कि एक बदलाव जो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो जल्दी से नोटिस कर देते हैं कि अरे इसके स्वभाव में बदल आ रहा है या फिर इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है या फिर पहले इस आदमी को बहुत जल्दी गुस्सा आता था अब ये बहुत बहुत ही कंट्रोल्ड और काम रहता है। तो ऐसी चीजें हैं वो कार्य करना शुरू कर देती है, वो अपना अपने वो बुद्धि के समझ के बाहर की चीज है या फिर हम उसको हम खुद महसूस नहीं कर पाते लेकिन बाकी लोग जरूर महसूस कर पाते हैं। तो इसीलिए जब मैं इस दोहे को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि स्वामी जी इसमें थोड़ा सा गूढ़ अर्थ भी है कि आप सिर्फ आसन पर ध्यान ना दें, क्योंकि स्वामी जी ने आगे लिखा है ना, बैठे मन मथ मारे कर सुमिरे पुरुष विदेह। तो आपका जो मन है उसका तो काम ही है कि आपको कहीं कहीं घसीट के लेके जाए, जो साथ जो अपने लिए अच्छी चीज है उस पर ध्यान ना दे। तो मन का वो कार्य ही है और स्वामी जी कहते हैं ये कि हमारे शरीर में आत्मा का जो शत्रु है वो मन है। तो इसीलिए इस दोहे में स्वामी जी ने लिखा है कि मन मन में जो अपने भाव है जो भी विषय तरंग है उनको सबको छोड़कर हमें परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। और एक्चुअली एक मुझे अभी फिर से याद आया कि जब हम इसकी बात कर रहे थे श्रद्धा की, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई। तो उसमें ऐसा है कि एक गांव होता है जिसमें काफी समय से वर्षा नहीं हुई होती, तो सारे लोग परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जाए इसका। तो कहीं से एक सुझाव आता है कि हम अगर यज्ञ करें पूजा करें तो बारिश हो सकती है। तो इसीलिए सारे जो गांव वाले हैं वो यज्ञ की तैयारी करते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है। कुछ लोगों में ये चर्चा भी होती है कि क्या ये सच में यज्ञ करने से बारिश होगी। तो उनमें एक थोड़ा सा मन में शंका रहती है कि इससे होगा या नहीं होगा। लेकिन उसी भीड़ में एक छोटा बच्चा होता है तो वो जो है उसको उसमें इतना बड़ा श्रद्धा होती है उसमें कि वो जब उस पूजा में आता है तो छाता लेके आता है। तो उसका इतना हमारा भाव होना चाहिए कि अगर मैं कुछ चीज कर रहा हूँ तो वो होगा ही होगा। उस बच्चे का जो भाव था वही भाव हमें हम में लाना है। जैसे वो छोटा बच्चा पूजा के लिए यज्ञ के लिए छतरी लेके आया ये सोच के कि जो होगा तो इमिजिएटली बारिश होगा। तो उतनी दृढ़ भक्ति और उतनी दृढ़ श्रद्धा अगर हम में आ जाए तो साधना में हम बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसा मन के हमारे भाव चेंज होना वैसे काफी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सदगुरु के चरणों में अगर हम बारंबार प्रार्थना करेंगे तो ये जरूर हो सकता है। मन के बारे में जब हम कहते हैं कि मन में हमें मन के सारे विषय तरंग को छोड़कर हमें परमात्मा का सुमिरन करना है, तो वो तो जड़ मन का तो विषय है ही नहीं। तो वो उसको कैसे हम मन को साधना के लिए तैयार करें, या कैसे हम मन को शांत करने की क्या क्या युक्ति है? तो एक अमृतवाणी में स्वामी जी ने कहा कि मन को अगर रोकना है तो मन को कैसे रोके, यही एक टाइटल से वो अमृतवाणी है। छोटी सी, आई थिंक 15-20 मिनट का वो स्निपेट है। तो उसमें स्वामी जी कहते हैं कि पहले तो हमारा भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा भोजन सात्विक या शुद्ध नहीं है तो हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। तो ये भी कहा जाता है कि अन्न से ही मन बनता है, तो जैसा अन्न जल पीजिए वैसा मन। अभी मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट उसमें स्वामी जी ये कहते हैं कि जिस तरीके का हम खाना खाते हैं उस तरीके का हमारा मन बनता है, और जिस तरीके का हम पानी पीते हैं उस तरीके की हमारी वाणी होती है। तो स्वामी जी ने उस अमृतवाणी में कहा कि आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। अगर हम बहुत ही तामसिक भोजन लेंगे तो हमारा मन फिर साधना में बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही चंचल बनता रहेगा। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में योगाभ्यास वाला जो अध्याय है उसमें किस तरीके का भोजन होना चाहिए, किस तरीके का अन्न हमें खाना चाहिए, उसके बारे में चर्चा की है। तो उसमें स्वामी जी कहते हैं कि रूखा सूखा अशन है, भींगा चना जलपान, भूजा अन्न अपत्य है, तेल मसाल अपान। तो उस अगर आप वो चतुर्थ मंडल अष्टम अध्याय है, तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारा पता चलेगा कि किस तरीके का खाना होना चाहिए, क्या त्यज्य है। जैसे कि एक दोहे में स्वामी जी कहते हैं कि मद्य मांस मल चरस जो गांजा भांग अफीम तंबाकू त्याज्य है, योग रहस्य असीम। तो स्वामी जी ने यहाँ पे क्या पथ्य होना चाहिए, किस तरीके का खाना होना चाहिए, ये सब बताया है। तो वो एक चीज है कि हमारा जो भोजन है वो भी हमारे मन को एक तरीके से उस पर असर होता है। मन हमारा अन्न से ही बनता है, जिस तरीके का हम अन्न खाते हैं उसी तरीके का मन बनता है। और अगर हमें साधना में प्रगति करनी है तो हमारा सात्विक और शुद्ध ही भोजन होना चाहिए। हम ये नहीं, अगर हम आत्मिक शुद्धि चाहते हैं तो शारीरिक शुद्धि से ही शुरुआत होती है, क्योंकि हमें ये जो शरीर मिला है इस शरीर का मेन पर्पज या सबसे बड़ा जो गोल है वो है परमात्मा प्राप्ति, और इस शरीर से ही वो होने वाला है, दूसरे कोई शरीर से नहीं होने वाला। मानव शरीर में ही वो परमात्मा पाने की संभावना है। तो इसीलिए हमें पहले शरीर का ध्यान रखना है, जो कि हमें अपने भोजन को सात्विक बनाकर उससे शुरुआत करनी है। फिर स्वामी जी कहते हैं कि और एक उसकी युक्ति है जो कि है आसन और प्राणायाम, जिसको हमें प्रतिदिन करना है। तो ये सब स्वामी जी मन को कैसे रोके उसके लिए बता रहे हैं। तो आसन प्राणायाम से क्या होगा कि हमारा शरीर सुदृढ़ बनेगा, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, फेफड़े हैं, वो स्ट्रांग बनेंगे। और वो सब क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ज्यादा देर तक लंबे समय तक साधना में बैठना है, वो भी बिना शरीर में कोई पीड़ा हुए। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि आसन प्राणायाम भी करना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि प्राण का और मन का बहुत गहरा संबंध होता है। तो जब हम प्राणों को प्राणायाम के माध्यम से जब प्राणों को कंट्रोल करते हैं, या प्राण तब हमारा हम धीरे धीरे मन पर भी कंट्रोल करते हैं। बट लेकिन क्या ये सबसे इफेक्टिव वे है कि जिससे हम मन पर पूरा कंट्रोल कर पाए? तो स्वामी जी कहते हैं कि ये होता है कि आपका भोजन सात्विक है, आप आसन प्राणायाम प्रतिदिन कर रहे हो, लेकिन आपका मन फिर भी कंट्रोल में नहीं है, आपके काबू में नहीं है। तो फिर क्या युक्ति है? तो स्वामी जी कहते हैं कि गुरु कृपा है वो सबसे बड़ा अस्त्र है, तो अगर आपका मन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको आप गुरु चरणों में दे दीजिए। तो ये सबसे बड़ी युक्ति है। तो तीन चीजें स्वामी जी ने बताई उसमें, मन को कैसे हम तरंगों से अगर हमें उसको हटाना है तो भोजन सात्विक हो, रोज आसन प्राणायाम हो, और सबसे बड़ा है कि गुरु गुरु कृपा। और गुरु कृपा कैसे होगी? तो वो उसके लिए तो हमें स्वामी जी ने जो विधिवत साधन बताया है वही करना है। तो स्वामी जी उद्घोष में ही कहते हैं कि यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। स्वामी जी ने कहा है कि यही मार्ग है, आप विधिवत साधन कीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, तो आपको अमर लोक पहुंचाने का जो काम है वो मेरा है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्वामी जी ने सदगुरुदेव ने खुद पर ली है कि आप ये करेंगे तो ये आपको दिया जाएगा। और स्वरवेद पाठ से भी मन शांत होता है। स्वामी जी ने उस अमृतवाणी में ये भी कहा कि आप स्वरवेद पढ़िए, स्वरवेद पाठ से मन शांत शांत होता है, तो वो करना जरूरी है। तो जो विधिवत साधन बताया है उसमें पहले तो हमें योगासन करना है, जिससे हमारी जो हमारे शरीर की सुदृढ़ता के लिए काम करेगा। हम जानते हैं कि ये अध्यात्म का जो रास्ता है लंबा है, कठिन है, तो इसीलिए हमारा स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा शरीर साथ नहीं देगा तो फिर हम कैसे इस कठिन पाथ पर चलेंगे। तो इसीलिए योगासन से हम अपने शरीर की सुदृढ़ता बनाएं ताकि हम अच्छी तरीके से साधना कर पाए, अच्छी तरीके से इस जीवन को जी पाए। प्राणायाम से हमारे प्राणों में ओ जाता है, और जैसे कि हमने चर्चा की इसके बारे में कि प्राण और मन का बहुत गहरा संबंध होता है, तो जब हम प्राणों में हमारे ओ जाएगा और प्राणों पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो धीरे धीरे मन पर भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बस वहीं पर हमें रुकना नहीं है, क्योंकि विधिवत साधन में आगे आता है स्वरवेद पाठ। तो स्वरवेद पाठ जब हम करते हैं तो वो हमारे आत्मा के साथ कार्य करता है। तो स्वामी जी ने हमेशा कहा ही है कि ये जो स्वरवेद है ये मेरी चेतन मणि है, इसमें मैंने सारे अपने जो साधना में जो अनुभव आए हैं वो लिखे हैं, और वो जो अनुभव है वो सिर्फ आत्मा ही कर सकती है। तो ये जो ज्ञान, स्वरवेद का जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा के लिए है, तो इसीलिए स्वरवेद का पाठ करना बहुत जरूरी है। संत प्रवर जी तो कहते ही है कि जो जो स्वरवेद से जुड़ा है वही विहंगम योग से जुड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि स्वरवेद का कितना बड़ा महत्व है हमारी आध्यात्मिक प्रगति में। और ये तो सद्गुरुदेव का ज्ञान है, तो उसको पढ़ना, उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें वो अनुभव कैसे होगा, और अनुभव अगर आएगा भी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस वजह से हो रहा है या स्वामी जी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इसीलिए स्वरवेद का पाठ होना बहुत बहुत ही जरूरी है। स्वामी जी हमेशा कहते ही है कि स्वरवेद का पाठ होना चाहिए। आप ये सोच सकते हैं कि इंग्लिश में अभी स्वरवेद आ रहा है, जो कि अभी पूरा उसका ट्रांसलेशन हुआ नहीं है, फिर भी स्वामी जी ने उसको रिलीज किया है। तो आप सोच सकते हैं कि भले ही वो पूरा ना हो, लेकिन उसमें अभी जितना भी उसका ट्रांसलेशन हुआ हो, जितने भी चैप्टर ट्रांसलेशन हुए हो, लोगों तक तो पहुंचना वो कितना जरूरी है। कंप्लीट ट्रांसलेशन होने के पहले रिलीज करना, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना अर्जेंट और कितना महत्वपूर्ण और टाइम सेंसिटिव काम है, कि होना बहुत जरूरी है। तो और इसे क्योंकि काफी सारे लोग इंग्लिश स्वरवेद चाहते हैं, तो आप स्वामी जी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे, लैंग्वेज बैरियर ना हो, और ये ज्ञान सब तक सब सा का सारे लोगों तक पहुंचे। तो स्वरवेद पाठ विधिवत साधन में आता है, उसके आगे आता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का 11 बार उच्चारण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वही हमारा गुरु मंत्र है। और उसके बाद फिर हम साधना में बैठते हैं। तो ये जो पूरी विधिवत साधना बताई गई है तो उसको करना बहुत जरूरी है, और जब हम उसको निरंतर करते रहेंगे तो गुरु कृपा से एक समय ऐसा जरूर आएगा कि उसमें कोई शंका नहीं है कि ऐसा समय जरूर आएगा कि हमारा मन शांत हो जाएगा, और ये सिर्फ गुरु कृपा से ही हो सकता है। तो अगर हमें साधना में अध्यात्म में प्रगति करनी है तो गुरु कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा इस दोहे के बारे में। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें। बैक टू यू नीतू जी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीरंग जी। आपने इस दोहे का विस्तृत भाष्य इतना इतने सरल और सुंदर शब्दों में किया, अनेक उदाहरण देते हुए, और हम सभी को इस बात से पुनः अवगत कराया कि ध्यान करने का सही तरीका कैसे है और हमें किन-किन चीजों का किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जब हम साधन में बैठते हैं तो हम पूरी तरह से साधना कर सके, जितना भी हो सके, अपने मन को विषयों से अलग करके हम साधना कर सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीरंग जी। हमारे पास आज के लिए एक और दोहा भी है, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम पहले प्रश्न ले सकते हैं या फिर हम दूसरे दोहे की तरफ पढ़ें।
आई थिंक हम प्रश्न ले सकते हैं इस दोहे पर, फिर
जी
यहाँ यहाँ पर प्रश्न होने के बाद फिर हम आगे वाला दोहे दोहा लेते हैं।
जी तो फिर श्रोताओं से निवेदन है कि आपके कुछ प्रश्न हो अगर इस दोहे को लेकर, या आप कुछ विचार शेयर करना चाहते हो तो कृपया रखें।
जय सतगुरुदेव। बहुत बढ़िया लगा सुन करके श्रीरंग जी। एक प्रश्न ये था कि मन और प्राण से भी सूक्ष्म सुरति होती है, तो जो चेतना की शक्ति होती है तो उसमें भी गुरु जी ने उद्घोष में बोला है कि सुरति को ऊपर चढ़ाने की बात की है। तो उसके बारे में यदि थोड़ा उस रिलेशनशिप को जो है, जो कि मन और प्राण से भी सूक्ष्म होता है, तो उसको इसमें कैसे इस्तेमाल करके भक्ति और साधना को और आगे को ले जाया जा सके।
बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मैं कोशिश करूंगा बट मैं बाद में चाहूंगा कि अनुभवी साधक भी इस पर भाष्य करे। तो जब सुरति की बात आती है तो मन का जो कार्य है वो इस तरीके से चलता है कि वो आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसको लेकर इंद्रियों के माध्यम से हमें भौतिक जगत का अनुभव कराता है। और ये भी होता है कि वही शक्ति लेकर वो हमें और कहीं गलत कार्यों में भी ले जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब हम अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो ये जो अपनी चेतना का जो बहिर्मुखी प्रवाह है, जो हमारे मन के मार्फत, इंद्रियों के मार्फत, ये जो सुरति का प्रवाह जो जा रहा है, प्रकृति में जा रहा है, उसको हमें उल्टा करना है। तो स्वामी जी उद्घोष में लिखते हैं कि सुरति उलटी के गगन चढ़ाऊं। तो उसमें उलटी का मतलब ये है कि जो प्रवाह हमारा बाहर जा रहा है उसको हमें रोकना है, और उसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि हमें पहले मन को रोकना है। अगर हम मन को नहीं रोक पाते तो हमें फिर इंद्रियों को रोकना है, क्योंकि मन मन को रोकना अगर हमारे बस की बात नहीं है तो फिर इंद्रियों को रोको। और उसी तरीके से हमें धीरे धीरे उस भावना को बढ़ाना है कि मेरी जो सुरति है वो बाहर नहीं जानी। अभी आई एम प्रोबली मेकिंग इट टू सिंपल, बट बेसिकली जो भौतिक सुखों के पीछे हमें नहीं जाना है, और वही उसी तरीके से हम सुरति को जो है उसका प्रवाह उल्टा कर सकते हैं। जब हम, और वो आगे कैसे बढ़ेगी, जब हम उसका जो बाह्य प्रवाह है उसको अगर हम रोक देंगे तो वो धीरे धीरे ऊपर ही चढ़ेगी। जैसे कि अगर एक घड़े में पानी है और अगर उसमें नीचे से अगर छेद है तो वो पानी नीचे चलता बहता जाएगा, बाहर बहता जाएगा, और फिर वो जो पानी की लेवल जो है वो उस घड़े में ऊपर नहीं बढ़ेगी, वो नीचे ही जाएगी। तो अगर हम सिर्फ उस छेद को अगर बुझा देंगे तो वो पानी जैसे जैसे उस घड़े में आएगा उसकी वो लेवल बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही सुरति का है, अगर उसका बाह्य प्रवाह हम रोक देंगे और भौतिक जो कार्यों में बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखेंगे तो फिर धीरे धीरे वो अपनी जो सुरति है वो ऊपर चढ़ती जाएगी। और उसमें भी सद्गुरु की कृपा होना ही जरूरी है। वो हम सिर्फ सोच कर ये नहीं कर सकते, लेकिन सद्गुरुदेव ने कहा है कि मन को रोको, और अगर मन से नहीं हम मन को हम रोक नहीं पा रहे तो शरीर को रोको। तो आई थिंक ये मैं कहना चाहूंगा, बट आई थिंक देर इज लॉट मोर टू इट। बाकी कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज ऐड करें।
जी बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी आपके प्रश्न के लिए, और श्रीरंग जी आप अपने विचार शेयर करने के लिए, और हमारे श्रोताओं में उत्कर्ष जी भी कुछ शेयर करना चाहते हैं।
जय सतगुरुदेव एवरीवन। श्रीरंग जी बहुत बहुत सुंदर भाष्य व्याख्या करी। आपका आंसर पे जस्ट बिल्डअप करते हुए बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे सुरति ऊपर होती है या अंतर्मुख होती है तो वो बहुत सूक्ष्म प्रोसेस है, वो समझ नहीं आता, मुझे भी समझ नहीं आता। बट एक चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व करी है साधना के क्रम में वो यह है कि जब साधना में स्टार्टिंग में बैठता था तो अचानक से ऐसा रियलाइज़ होता था कि मेरा मन मुझे लेके कहीं और ही चला गया है, और मुझे फिर याद आता था अरे मैं तो साधना करने बैठा हूँ, मुझे तो यहाँ देखना है इस उपदिष्ट भूमि पर। और फिर मुझे फिर वापस अपने मन को लाके अपनी फोकस को वहाँ बैठाना होता था। फिर थोड़ी देर में अनजाने में कुछ पता ही नहीं लगता था कब मन लेकर मुझे भाग जा रहा है। अब मन मुझे लेकर भाग जा रहा है, ये मुझे लेकर भाग जाना का अर्थ है मतलब मेरी सुरति, मेरे चेतन फोकस को, मेरी चेतन शक्ति को लेकर भाग जा रहा है और मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि मैं एक तरह से एक लेंस से इस दुनिया को देख रहा हूँ और मैं खुद को वह लेंस ही समझने लगता हूँ। तो धीरे धीरे करके साधना में ये अंतर मुझे तब पता लगना शुरू हुआ जब ये जो फ्रीक्वेंसी है जितनी बार यह जाने अनजाने में भाग जाना है इस जिस काम के लिए मैं इन 10 मिनट के लिए बैठा हूँ वो काम ही भूल जाना, कहीं और ही निकल जाना, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया। फिर साधना में ये कहते हैं ना मन मत मारी कर, तो मन तो आप सबको समझ है ही, मन कहाँ रहता है, मन तो पूरे शरीर में फैला हुआ है पर मन सबसे ज्यादा रहता है हमारे हमारे जहाँ आँख होती है उस इंद्री के सामने 80% तक रहता है, पर मन की पहुँच बाकी सारी इंद्रियों के सामने भी है, जो बाकी की 4 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, बाकी की 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, एक एक शरीर का एक एक रोम जो है उन सब से मन जुड़ा हुआ है। कहीं पे ठंड लगी, कहीं पे किसी कोई कीड़ा चल गया, आपको शरीर में सब कुछ अपने स्किन पे सब कुछ अनुभव में आता है, तो मन ही तो है वो सब चीज़ें पकड़ के आपको बैठा देता है, कहीं भी ले जाता है। धीरे धीरे जब सुरति और अंतर्मुखी होने लगती है तब वो शरीर के कुछ कुछ चीज़ों का भान कम होने लगेगा, हल्के फुल्के ठंड लगना, गर्मी लगना, कहीं पे घुटने में दर्द होना हल्का सा, पीठ में कुछ जकड़न होना, ये सारे जो भान हैं धीरे धीरे अनुभव हैं ये वाले बाह्य जड़ अनुभव धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और एक वो फ्रीक्वेंसी मन के साथ भागने की कम होगी और धीरे धीरे शरीर का जो अनुभव है जड़ अनुभव है इंद्रियों का वो धीरे धीरे करके कम होता है। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं धीरे धीरे साधना में, बाकी तो स्वामी जी सद्गुरुदेव की ही कृपा से ये सब संभव है, पर मुझे लगता है ये शुभ लक्षण होता है, ये माइलस्टोन्स होते हैं कि जब हमें हमारी सुरति अंतर्मुखी होना शुरू होती है और धीरे धीरे करके अंतर्मुखी होते होते ऊपर जाती है, कुछ कुछ खिंचाव होंगे शरीर में, वो सब आगे की बातें हैं, पर मैं बस ये कुछ एग्जांपल्स से शेयर करना चाह रहा था जो मैंने एटलीस्ट समझा है। जय सतगुरुदेव।
जी बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। सुधांशु जी भी कुछ शेयर करना चाहते हैं।
जी धन्यवाद नीतू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीरंग जी और निरंजन जी और उत्कर्ष जी को इतने अच्छे डिस्कशन के लिए। तो इसी क्रम में मैं भी अपने भाव रखना चाहूँगा। तो जैसा कि श्रीरंग जी बतला रहे थे मन के बारे में, और मन को रोकने के लिए स्वामी जी ने जो साधना पद्धति बतलाई है और उसके लिए जिस प्रकार आसन और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बतलाया है, और उसी क्रम में निरंजन जी ने पूछा सुरति के बारे में। तो मेरा विचार ऐसा है कि यह जो पूरा साधना है, यह जो साधना पद्धति है, यह हमें सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर लेके जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम एक उदाहरण से हम समझें, कोई एक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक नहीं है और वो किसी विषय के लिए बार बार उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, बार बार उसमें उस विषय में जा रहा है। तो अगर आप उससे पूछें कि तुम्हारे अंदर जो यह डेविएशन है, इसका कारण क्या है, तो वह कहेगा कि वह जो विषय है, वह जो सब्जेक्ट है, वह उसका कारण है। लेकिन जब वह सूक्ष्मता से सोचेगा, जब वह थोड़ा हम जिसको कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करेगा, तो फिर उसको समझ में आता है कि अच्छा, वो विषय नहीं, वो मेरे थॉट्स हैं जो हमको उसकी तरफ खींचते हैं। क्योंकि अगर वह नहीं रहेगा तो कुछ और रहेगा। फर्दर अगर जब उसकी यात्रा और आगे बढ़ती है, जब वह और सूक्ष्म जाता है, तो उसको समझ में आता है कि यह वो विचार नहीं है, यह वह मन है। अगर वह विचार नहीं रहेगा तो कोई और विचार में जाएगा, कोई और विचार नहीं रहेगा तो कोई और विचार में जाएगा। तो जो डेविएशंस हो रहा है वह मन के कारण हो रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक पथिक अगर और सूक्ष्मता में जाएगा, तो मन क्यों ऐसा कर रहा है? मेरे अंदर जो डेविएशन हो रहा है, इसका कारण क्या मन है? जब आप और सूक्ष्मता में जाएंगे तो आप सुरति में जाएंगे, कि सुरति आप आत्मिक शक्ति जो है, वह हमारी आत्मिक शक्ति सुरति है, और उसमें डेविएशन कैसे आ रहा है? आत्मा जो भी अनुभव कर रहा है वह सुरति से कर रहा है। स्वामी जी ने कहा, आत्मा का चेतन करण है सुरति। मतलब सुरति जहां जहां जाएगी, आत्मा को वही अनुभव होगा। और सुरति कहाँ जाएगी? तो स्वामी जी ने कहा, मना सुरति ले उड़त है बाहर दृश्य पसार। तो जो मन है वह आपकी सुरति को लेकर चला जाता है, और क्या करता है, बाहर के दृश्यों को आपके सामने पसार देता है, और फिर उन दृश्यों में मन जो है आपकी सुरति को लगाता है। तो जब हम विहंगम योग साधना में आगे बढ़ते हैं, तो विहंगम योग साधना में क्या करते हैं, हम मन को कंट्रोल करते हैं, मन को एक स्थान पर रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? जब मन रुक जाएगा, मन के समक्ष कोई विषय नहीं रहेंगे, तो जो आपकी सुरति है वह अपनी आंतरिक यात्रा आरंभ कर सकती है। इसीलिए स्वामी जी ने भजन में भी लिखा, सुरति उलटी अवलोक जी तोहे पीव मिलेंगे। तो जब आप सूक्ष्मता की ओर जाएंगे विहंगम योग में, तो साधना तो सुरति की ही है। मन जो है, आप ऐसा समझ लें कि एक्सटर्नल डेविएशन है जिसको रोकना है, लेकिन आंतरिक यात्रा जो है, आध्यात्मिक यात्रा जो है, वह सुरति के साथ ही शुरू होगी। तो सूक्ष्मतम लेवल पे अगर हम कहें, तो सुरति को इन सभी प्रकार के डेविएशन से रोकने के लिए ही मन को शांत करने के बारे में कहा जाता है, ऐसा मेरा भाव है। धन्यवाद।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी इसको और क्लैरिफाई करने के लिए, निरंजन जी के प्रश्न के लिए। और आनंद जी भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आनंद जी।
धन्यवाद नीतू जी। और आई थिंक सभी लोगों ने जिन्होंने भी इस पे अपना भाव रखा या अपने विचारों को व्यक्त किया, आई थिंक डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला उससे। मुझे इस विषय में ये कहना है, और ये मैं कहीं पे मैंने पढ़ा था, उसके आधार पे इसको कहना चाहता हूँ इन बातों को। और अगर ये विहंगम योग के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है तो जरूर मुझे जो है करेक्ट कीजिएगा, या मुझे बताइएगा कि क्या उसमें गड़बड़ है, या बिल्कुल अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। तो क्योंकि हम श्रुति की बात कर रहे हैं और मैंने विहंगम योग के बहुत सारे साधकों से और डिफरेंट सत्संगों में ये भी सुना है कि अष्टम श्रुति की बात होती है, तो उनका कहने का तात्पर्य या भाव ये रहता है कि आप जो है अष्टम श्रुति जो है वो रियल तत्व है, या उस पर फोकस कीजिए, या वही मेन चीज है। तो अगर अष्टम श्रुति पे फोकस कीजिए तो बाकी की सात श्रुतियां क्या है, या ये क्या, अगर अष्टम श्रुति पे हमें फोकस करना है तो बाकी की जो जो सेवन श्रुतीज हैं वो क्या है, राइट? तो इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा और मुझे लगा कि शायद ये उसी की बात हो रही है, तो मैं उसको उसी को थोड़ा कहने की कोशिश करना चाहता हूँ यहाँ पे। यूजली क्या होता है कि हमें जो है बाहर का ज्ञान होता है मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का हमें बोध होता है, और शायद उसे आध्यात्मिक भाषा में, आध्यात्मिक लैंग्वेज में इसको विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का तात्पर्य ये होता है कि लिमिटेड नॉलेज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं कोई चीज़ देख रहे हैं और उसमें कहीं पे हम जो है जैसे कि कोई दृश्य देख रहे हैं, या कोई एक चीज को देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, चिड़िया देख रहे हैं, तो यूजली हमारा पहले क्या होता है, पहले ध्यान वहां पे जाता है और फिर धीरे धीरे मन जो है उसमें लग जाता है, तो वो एक हमारा जो एक फोकस होता है बाकी सारी चीजों से हट के उसी एक चीज पर्टिकुलर चीज पे हो जाता है, तो शायद उसको विज्ञान कहते हैं या उसको लिमिटेड नॉलेज कहते हैं कि हाँ जहां पर आपका मन लग गया उसकी एक लिमिटेड नॉलेज होगी। तो आई थिंक लिमिटेड नॉलेज की सेवन कैटेगरीज को कहा गया कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमें पांच इंद्रियों के माध्यम से पांच तरह के विज्ञान होते हैं, रूप रस गंध और स्पर्श, राइट? वो सब चीजें जो कि हमारे पांच इंद्रियों जो करस्पॉन्ड करती हैं हमारे पांच इंद्रियों को, तो इनको कहा गया कि पांच तरह के विज्ञान। फिर उसके बाद एक होता है मन का ज्ञान होता है, मन का विज्ञान होता है कि मन में भी लगातार मनन होता रहता है, विचार आते रहते हैं, तो उसको शायद छठे तरह का विज्ञान कहते हैं। और जो सातवें तरह का विज्ञान होता है उसको उसको कहते हैं, जहाँ जो जो उसमें लिखा हुआ था उसको उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूँ कि उसको कहते हैं क्लेश क्लेश माइंड और क्लिष्ट माइंड। पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है कि हमें हमारे हमारे जो चित्त है उसमें पांच तरह का क्लेश होता है, अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, राइट? तो वो क्लिष्ट माइंड। क्लिष्ट माइंड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे सारे अनुभव मन के अंदर ही होते हैं, अंतःकरण में ही होते हैं, लेकिन हमारे जो जो नॉर्मल लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो ऐसा होता है कि आई थिंक उसमें कभी हमें वो अंतर नहीं महसूस होता है, हमें लगता है कि ये मैं देख रहा हूँ और ये सारी बहुत सारी सारी चीजें जो है जो भी अनुभव हो रहे हैं वो सब बाहर हो रहा है। बट अकॉर्डिंग टू दी स्पिरिचुअल टेक्स्ट आई थिंक सारे अनुभव मन के अंदर ही होते हैं, तो इसको ये सातवें तरह का जो है विज्ञान कहा गया। और इन सातों से अलग जो होता है वो स्वज्ञान होता है या स्वयं का ज्ञान होता है, और उसको कहा गया कि बेसिकली उसको विज्ञान नहीं कहा गया, उसको कहा गया कि अपना ज्ञान या आत्मज्ञान। तो मेरे हिसाब से, या मैंने जो पढ़ा मेरे हिसाब से, ये जो है सात तरह की श्रुति हो गई, यानी कि पांच इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान हुआ विज्ञान हुआ वो पांच तरह की श्रुति हो गई। छठा हमारे मन का ज्ञान, मन में जो लगातार विचार हो रहे हैं, लगातार हम जो अलग अलग विषयों पर भाग रहे हैं वो मन का ज्ञान। और सातवां हो गया जो क्लेश माइंड या क्लिष्ट माइंड, जो हमारे मन के अंदर हमारे चित्त के अंदर तरह तरह के जो क्ले जो ये पांच क्लेश हैं, अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश, ये सातवीं सुरति हो गई। और आठवीं सुरति या जो जो अष्टम या जिसको ज्ञान भी कह सकते हैं, विज्ञान नहीं, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, वो हमारा आत्मज्ञान। तो ये मैंने समझा बेस्ड ऑन हमारे जो इतने भी सत्संग हुए और बेस्ड ऑन जो मेरी रीडिंग थी। आई डोंट नो कि ये इसको इस तरह से कोरिलेट करना सही है या नहीं सही है, लेकिन या इस तरह से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सुरति पे चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं भी अपने जो है विचार इस विषय में रखूं और देखूं कि अगर कोई गलती हुई हो तो उसको समझने की कोशिश करूं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी अपने विचार शेयर करने के लिए, और मैं पुनः आग्रह करूंगी कि कोई और गुरु भाई गुरु बहन इस पर अपना और ऐड करना चाहते हैं तो कृपया शेयर करें।
ये एक बहुत अच्छा लगा सुन के आनंद जी। आप अपना थोड़ा परिचय देंगे? आप विहंगम योग से ही जुड़े हुए हैं पहले?
जी निरंजन जी, मैं आनंद गुप्ता, हमारी हमने मुलाकात भी हुई है, आई थिंक न्यूजर्सी में एक
ओह
बार
अच्छा
बात
अच्छा
हुई,
अच्छा
लेकिन
अच्छा
उन्हें
ओके
बहुत दिन से मैं जुड़ा हुआ अभिहंग अभियोग से।
जी
जी
जी जी जी आई थिंक सुरुति के ऊपर जो है यदि और कोई गुरु भाई थोड़ा और उस पे प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा भगवद गीता में भी बोला गया है कि आत्मा जो है सोई हुई है, उसका हमें ज्ञान नहीं है, उसका हमें अनुभव नहीं है। तो सुरति जो है आत्मशक्ति है, और पर लगता है कि आत्मशक्ति जो है वो है जिसे कि हमें उलट करके ऊपर की ओर अंतर्मुखी गुरुमुखी की ओर ले जाना है। तो ऐसा मेरा अभी तक समझ है, पर आपने अष्ट सुरति की बात की है, तो यदि कोई गुरु भाई उसके ऊपर टिप्पणी करें बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।
जय सदगुरुदेव। तो ये अष्टम सुरति के बारे में स्वरवेद में चर्चा आई है, मुझे अभी वो एग्जैक्टली पता नहीं है कि बाकी की सात सुरति कैसे है, बट आई थिंक, और मैं अभी आई डोंट वांट टू यू नो जस्ट गेस समथिंग, बट एक जो दोहा, जैसे अभी मैं स्वरवेद को रिफर कर रहा था, तो उसमें एक दोहा है जिसमें स्वामी जी ने लिखा है कि सप्त सुरति जड़ देश में अष्टम अक्षर धाम निरति निगम गम पुरुष में पावे अमृत नाम। तो स्वामी जी ने कहा है कि जब परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन होता है, तो जो आत्मा की चेतन शक्ति है सुरति, वो उससे भी और सूक्ष्म हो जाती है, और जब उसका निरति में रूपांतरण होता है, यानी उस और उसकी जड़ता और कम हो जाती है, और सूक्ष्म जो हो जाती है, जो तब वो निरति कहलाती है, और वही निरति परमात्मा के साथ उसका मिलन होता है। तो यहाँ पे स्वामी जी ने लिखा है कि जो सप्तम सुरति है वो जड़ देश में है, तो उनका कार्य जो है वो अक्षरधाम में नहीं है, उनका कार्य जो चलता है वो जो जड़ जगत है उसके लिए है। तो आई थिंक उस हिसाब से मैं ये अभी ये मेरा बुद्धि के धरातल पर मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो शायद ये हो सकता है कि उसमें से जो पांच जो है वो अपने इंद्रियों के साथ जुड़ी हो, तो ये हो सकता है। बाकी की दो आई थिंक हम एक बार ऐसी चर्चा आई थी, बट मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है, तो कोई और गुरु भाई गुरु बहन इस पर थोड़ा और प्रकाश डाले तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें स्वामी जी ने लिखा है कि आठ सुरति होती है, और जब परमात्मा के साथ मिलन होता है तो वो सिर्फ निरति यानी जो अष्टम सुरति होती है उसका होता है, बाकी के जो सात जो है वो वहां तक नहीं पहुंचती।
जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीरंग जी। तो और भी हम इस दोहे पर और चर्चा कर सकते हैं, तो जो ये टॉपिक आया है सुरति निरति का और कैसे इसको और अच्छे से समझें, तो मैं आग्रह करूंगी और कोई अपने विचार शेयर करना चाहते हो तो कृपया आगे आए।
एक चीज और था कि अगर नॉन टेक्निकल टर्म में यदि समझने का प्रयत्न करें तो सुरति को हम जनरली स्पीकिंग क्या बोलते हैं, आत्मशक्ति, क्योंकि जनरली हम समझ सकते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये हमारे इनर ऑर्गन्स हैं, जो जिससे कि हम एक इंस्ट्रूमेंट के समान हम मतलब हम आत्मा इधर इवन दो ये बाई थियरी थियरी थियोरेटिकली जो है हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एक होता है ना कि एक एक्टर जो है एक्टिंग कर रहा है उस रोल में, तो हम इवन दो वो लिटरली वो एक्टर जो है वो हीरो नहीं है वहां पर है, पर वो एक्टिंग कर रहा है। तो उस तरह से जो हम एक्टिंग कर सकते हैं कि भाई हम आत्मा है और ये जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको कि हमें प्रयोग करना है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से लेकर के वहां के बीच में जो है यह सुरति है जिसको कि हम आत्मशक्ति भी कह सकते हैं, जो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे जो जो इनर कॉलिंग होती है या जो हंच जिसको बोलते हैं या जो क्या वही होती है ये सुरति आत्मशक्ति। एक होता है कि हाँ नहीं, एक होता है ना डबल कि कोई एक डिसीजन लेना है तो नहीं, एक गट फीलिंग जो आती आती है, तो क्या उससे कोई रिलेशनशिप है इसकी?
जी निरंजन जी यशोदेव सुधांशु बोल रहा हूँ। तो अगर आप उसका
पर्यायवाची अगर खोज रहे हो, सिनोनिम्स खोज रहे हो, तो मेरे विचार से जैसे आप उसको आत्मा की सुरति कह लीजिए, चेतन शक्ति कह लीजिए, या फिर हमारी चेतना कह लीजिए, कॉन्शियसनेस, है ना। तो वास्तव में हम वही अनुभव करते हैं जहां पर हमारी चेतना जाती है। तो आत्मा आप अगर हम इसको फिजिकल वर्ल्ड में एग्जाम्पल के रूप में लें, ठीक है, तो आप अगर कमरे में बैठे हैं और आप टीवी देख रहे हैं, आपके बगल में कोई बोले, बट अगर आपका ध्यान टीवी पे है तो आप नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपका मन वहां पर नहीं था, है ना। तो सारा फिजिकल साइंस वहां पर काम करता है। ध्वनि आई कान के पर्दे तक, टकराया, लेकिन मन नहीं था तो वो हम तक नहीं पहुंचा। ठीक उसी प्रकार मेरा ऐसा भाव है कि अगर मन आपके सामने कितने भी विचार रखे, अगर आपकी चेतना वहां पर नहीं है तो आत्मा को उसका अनुभव नहीं होगा। तो हम जो अनुभव करते हैं, हमारी आत्मा जो भी अनुभव करती है, वह वही अनुभव करती है जो हमारी जो चेतना है, हमारी जो श्रुति है, जिसके साथ लगी रहती है, मन के साथ जिस विषय पर लगी रहती है वही हमारी आत्मा अनुभव करती है। तो आप इसको, आप जो हंच कह रहे हैं, आप उसको उस प्रोस्पेक्ट में भी ले सकते हैं जो आप कहते हैं कि आत्मिक बल, आप जो अपने आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो वो तो आपके वो आपका आत्मबल हो गया। लेकिन आत्मबल को चेतना कहना या फिर सुरति कहना सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि मानसिक बल और मन दोनों दो चीज है। जिस प्रकार, है ना, मानसिक बल का तात्पर्य क्या है? मानसिक बल का तात्पर्य है कि मन के डेविएशंस को रोकने में आपकी आप कितने शक्तिशाली हैं, कितने आप कैपेबल हैं, वह आपके मानसिक बल को दिखलाता है, लेकिन वह मन नहीं है, है ना। उसी प्रकार जो हमारा आत्मबल है वह चेतना से भिन्न इसलिए है कि सुरति है कि वो किधर भटक रही है, वह आत्मा का करण है। वो जहां जाएगी आत्मा वह अनुभव करेगा। और आत्मिक बल वह है कि हम बाहर के डेविएशंस को छोड़कर आत्मा का जो जो डिसीजन है उस पर हम कितने कंसिस्टेंट रहते हैं। जो आप हंच की बात कर रहे हैं, हिंच की बात कर रहे हैं, सॉरी, कि कई बार ऐसा होता है कि आपका माइंड कह रहा है कि डू दिस, बट योर इनर साउंड इज सेइंग दैट कि ये सही नहीं है, आई हैव टू गो फॉर दिस। लेकिन रिजल्ट के वशीभूत हो के, फल के वशीभूत हो के आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो वो आत्मबल कह सकते हैं कि आत्मबल मेरा मजबूत नहीं है तो हम विषय के तरफ चले गए, आत्मिक आवाज को न सुनते हुए। तो ये एक डिफरेंस है कि जो अंदर की आवाज है उसको हम आत्मिक शक्ति कह सकते हैं, और जो सुरति है वह चेतन करण है जिसके माध्यम से आत्मा इस जगत को या फिर आध्यात्मिक अनुभूतियों को अनुभव करती है। धन्यवाद
जय सत
जी, बहुत
गुरुदेव।
धन्यवाद।
मेरा नाम रश्मि है, मैं वर्जीनिया से ज्वाइन की हूँ। मैंने जो भी पढ़ा है उस हिसाब से स्वामी जी के बुक में सात सुरती जो भी है सारे हम लोग के प्राकृतिक लेवल में, सिर्फ एक आठवां सुरती ही जो हम लोग को पलट करके हरिद्वार या दसम द्वार की तरफ लेके जाता है, जिसमें इंगला पिंगला और फिर सुषमना नाड़ी, जिसमें मकर तार एक्टिवेट होता है और वो झूलते हुए फिर दसम द्वार की तरफ जाता है, और फिर वो हम लोग अपनी सारी शक्तियों को उसी से इन्वर्ट कर पाते हैं, और फिर वो एकादश खिड़की से और फिर अक्षर हम लोग देख पाते हैं। वो होगी मन की स्थिति कैसे वो आठवीं सूरती काम करती है। बट हाँ, जब तक हमारा मन अंदर की तरफ नहीं होता, वो आठवीं सूरती हम लोग की अभी तक से बाहर ही है। मेरा जो भी पढ़ा है स्वामी जी के बुक से यही है कि वो किसी भी हालत में वो हम लोग की जो
इन्वर्ट करना, वो आठवीं सुरती है, तो वो सुरती में भी वो डिफरेंट काइंड का शक्ति हो जो एक्टिवेट होता है, बिकॉज हम लोग के सेंसेस डिफरेंट है। और लेकिन जहाँ पे, जैसे भैया बता रहे थे कि जहाँ पे मन होता है वहीं पे हमारी सारी शक्तियां भी जाती है, तो वो अष्टम जब दूसरी है भूमि में जब हम लोग इन्वर्ट करते हैं, और फिर दशम द्वार में फिर हम लोग करते हैं, तब जा करके वो सारी शक्ति एकत्र होती है, और फिर वो सूरती इफेक्ट करती है। तो बट हाँ, आठवीं सूरती तो हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मतलब आई मीन वही कहना सकती हूँ कि जब सुषमना एक्टिवेट होता है और फिर मकर तार, तब जा करके वो परमात्मा का, वो बहुत दूर की बात है लेकिन आप वो हमारे शरीर के बाहर, यही सूरती हम लोग को आगे तक लेके जाती है। जय सतगुरु।
बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, इस पर और विचार और स्वरवेद से आपने जो पढ़ा है और ग्रंथ से वो आपने जो शेयर किया। तो निरंजन जी, आपको और कोई प्रश्न है या कुछ और आप शेयर करना चाहते हैं?
जी, ये देखिए, ये विषय जो है बहुत ही सूक्ष्म विषय है और गुरु भाइयों ने बहुत सुंदर तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। हम तो हमारी ज्ञान तो बढ़ ही सकती है, पूर्ण समझ तो ये तो लगता है बहुत लंबे समय तक स्टूडेंट बने रह जाएंगे, और पर ये सब तरीकों से समझने पर जो है काफ़ी कुछ समझ में आता है। और जैसा कि जब एक बहुत सिंपल एग्जांपल जैसे श्री रंग जी ने बताया था, घड़ा जो है उस ये इस चीज़ को हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं उधर की ओर बहाव रहता है, वो तो बहुत टिपिकल है जिसको कि हम भौतिक जगत में लगी हुई है, तो वहां पर आसक्ति जो है उसको कैसे हम कम कर सकें, ये वही एक्सरसाइज जैसा मुझे समझ में आया है कि मान लीजिए कि किसी को रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो उसकी क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, खा लिया रसगुल्ला कोई दिक्कत नहीं है, पर यह नहीं होना चाहिए कि अब अगली बार कब खाना है। तो इस तरह से हमने घड़े में जो एक पैच थी उसको हमने वहां पर एक पैच कर दिया उसको, तो इस तरह से अगर हम समझ रहे हैं तो फिर ये टोटली मेक सेंस कि भाई जब हम इस तरह करते हैं तब जो है हमारी जो सुरति जो है, जो सूक्ष्म है, जो कि मन और प्राण जो हम वायु शक्ति जो बोलते हैं उनसे भी सूक्ष्म है, तब जो है वो उसको हम कंटेन कर सकते हैं और फिर वो घड़ा ऊपर ही जा सकता है। तो ऐसा मेरा समझ है अभी तक, और ये सब अनुभव का भी विषय है जैसा मुझे लगता है, पर इस तरह का डिस्कशन से बहुत ज्यादा क्लैरिटी होता है और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि भौतिक जगत में हमें कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए, और तो उसी का इंटरव्यू है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत सुंदर चर्चा रही और मुझे आशा है कि
नमस्कार जी,
हमारी,
नमस्कार
जी
जी,
जय
जय
सद्गुरुदेव जितेंद्र जी।
सतगुरुदेव, जय सतगुरुदेव। बहुत हाई लेवल डिस्कशन चल रही है, लेकिन श्री रंग जी वो आसन के बारे में बात हो रही थी तो मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब ध्यान लगाते हैं तब उसका एम होता है तो उसकी ओर हम ध्यान लगाते हैं जिसके लिए रोशनी चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन है कि अंधकार में जैसे ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में आप आसन लगाना चाहते हैं तो आपको एम नजर नहीं आएगा, तो ये एक कंडीशन है कि रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह जैसे हमारे में वो कंप्लीट डार्कनेस जितनी होगी उतना ही आपका ध्यान ज्यादा लगेगा, कंसंट्रेशन। तो इसके विषय में ये कैसे हो सकता है कि अंधकार में आप एम देख सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल वो हमें रोशनी में जाना पड़ता है, तो इज इट पॉसिबल जैसे आप बोल रहे हैं कि लेट कर भी आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब अंधकार में भी कर सकते हैं आप आसन?
इसके बारे में आप थोड़ा अंधकार के बारे में प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा?
जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर हम देखें कि प्रथम भूमि की साधना उस तरीके से क्यों होती है, वो फोकल पॉइंट क्यों है, तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारी जो दृष्टि है वो उस फोकल पॉइंट पे होनी चाहिए। और अगर आप दृष्टि यूज करना चाहते हैं तो आपको लाइट होना जरूरी है। बट वो कितना हो उसका भी स्वामी जी ने वर्णन किया है। स्वामी जी कहते हैं कि लाइट जो है वो आपके आंखों पर सामने से न आए, और इतना भी प्रखर ना हो कि आपको सब कुछ दिखाई दे। तो जो जो लाइट कितना चाहिए कि बस उतना ही चाहिए जिससे आप अपने फोकल पॉइंट को देख पाए। तो आपको पूरे डार्क में अगर आप प्रथम भूमि की साधना कर रहे हैं तो आपको पूरे डार्क में आपकी साधना नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर पूरा डार्क रहेगा तो इट इज एज गुड एज हम अपने फोकल पॉइंट को नहीं देख रहे हैं। हम लोगों ने आंखों को बंद कर दिया है, राइट? और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तब अपनी मन को जो है, जो सारे अपने चित्त में संस्कार है उससे जो वृत्तियां उभर कर आती है, उससे जो मन में विचार आते हैं, वो तो फिर अपना जो अंदर का जो विश्व है उसमें फिर मन चला जाता है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि प्रथम भूमि का जो फोकल पॉइंट है वो इसलिए है क्योंकि वो बाहर का जग और अंदर का जग, उसका जो है जंक्शन है। तो इसीलिए प्रथम भूमि की साधना की अगर हम बात करें तो उसमें लाइट होना जरूरी है। बस इतना लाइट हो कि आप अपने फोकल पॉइंट को देख पाए, और लाइट जो है वो सीधा सामने से ना आए। अगर वो आइदर आपके सर के ऊपर से आए या पीछे से आए, ताकि आपके आंखों पर कोई स्ट्रेन ना आए, तो लाइट होना जरूरी है। तो आप आसन
थैंक
में
यू।
सोकर कर सकते हो, बट उतना लाइट होना जरूरी है जिससे आप अपने फोकल पॉइंट को देख पाए।
ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू।
जय सतगुरुदेव। मुकेश बात कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त डिस्कशन चल रहा है। वेरी बेसिक क्वेश्चन कि अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, काफी विचार आ रहे हैं, तो एक तो ये कि आप सोचते हो, फिर अपना ध्यान वापस उस तरफ ले जाते कि आपका मन इधर उधर जा रहा है। लेकिन अगर बहुत कोशिश कर रहे हैं आप, नहीं हो पा रहा है, लगे हुए हैं, तो उसके लिए कुछ और रेमेडी है कि जैसे आप सतगुरु का नाम दें तो फिर आपका ध्यान सिर्फ उसमें चला जाए, कुछ इस तरह के कोई तरीकेकार है? धन्यवाद।
जी, तो जैसे हम मन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो जिस अमृतवाणी के मैं बात कर रहा था उसमें स्वामी जी ने तीन चीजें बताई है, राइट? एक तो है कि आपका जो अन्न है, आपका जो खान पान है, वो सात्विक होना चाहिए। उससे, क्योंकि उस पर मन उसी से बनता है, अन्न से ही मन बनता है। तो उसके जो जिस तरीके का हम आहार लेंगे उसी तरीके का हमारा मन बनता जाएगा। तो वो एक चीज़ है मन को शांत करने का। दूसरा, स्वामी जी ने बताया था कि आपको आसन प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम का महत्व इसलिए है क्योंकि उससे मन और प्राण का बहुत गहरा संबंध है। तो जैसे अपने प्राण जैसे धीरे धीरे प्राण जैसे स्लो होता है, वैसे भी मन भी उसका धीरे हो जाता है। तो जब जब समाधि की स्थिति आती है तो हमारे प्राण का जो है पूरा लय हो जाता है, और तभी मन का भी लय होता है। तो तभी हम एक मेडिकल दृष्टि से हम देखें तो निष्प्राण हो जाते हैं, प्राण चलता नहीं है। वो अपना जो नासिका से प्राण नहीं चलता है। तो वो एक चीज़ है कि दो, एक तो अन्न है किस तरीके का होना चाहिए आहार, और दूसरा है कि प्राणायाम। बट स्वामी जी ने जो आगे बताया कि सबसे बड़ा जो अस्त्र है मन को कंट्रोल करने में वो है गुरु कृपा। तो और एक दोहे में स्वामी जी ने लिखा है कि प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना हो ये स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। तो स्वामी जी ने इसमें कहा, क्या कहा है कि अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, आप बाकी कोई भी उपाय कर लो, लेकिन जो फाइनल या फिर अल्टीमेट जो इसका तोड़ है मन को शांत करने का, वो है सद्गुरु दया। और जो कब होगा, जब हम सद्गुरु के चरणों में अधीन होकर उनसे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में भी बहुत शक्ति होती है, तो आप जब साधना में बैठेंगे तो आप सद्गुरु चरणों में प्रार्थना रखिए कि मैं साधना में बैठ रहा हूँ, मुझे मुझे आप साधना में मेरी सहायता कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और दूसरा है कि सद्गुरु को, अगर सद्गुरु प्रसाद कब मिलेगा हमें, मन कैसे अपने स्वाधीन होगा सद्गुरु प्रसाद से, और वो कब मिलेगा, जब सद्गुरु हमसे प्रसन्न होंगे। और वो कब प्रसन्न होंगे, जब हमारा जो हमारा आचरण कैसा है उस पर, और किस तरीके का हमारा आचरण होना चाहिए, सेवा सेवा जित शिष्य होना चाहिए हमें। और सबसे बड़ी जो सद्गुरु की सेवा है वो है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार। तो अगर आप बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसको देखेंगे, तो सबसे हमारे पास जो इफेक्टिव अस्त्र है मन को कंट्रोल करने का, वो आपको सेवा में मिलेगा। और कौन सी सेवा, सद्गुरु की सेवा। और सबसे महत्वपूर्ण या बड़ी सद्गुरु की सेवा है, वो है ब्रह्म विद्या का या फिर विहंगम योग के ज्ञान का प्रचार प्रसार। तो अगर वो उसमें हम लग जाएंगे, हमारी चेतना अगर हमेशा उसी में रहेगी कि कैसे इस ज्ञान का हम प्रचार करें, कैसे ज्यादा लोगों को जोड़े, किस तरीके से स्वरवेद का प्रचार प्रसार इस जनमानस में हो, अगर इस पर हमारा ध्यान रहेगा, तो सद्गुरु हमसे प्रसन्न होकर मन को मन का लय कर देंगे। तो ये तीन तीन चीजें हैं आप जो हमारे इसमें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वो तो ना खान पान आहार, दूसरा है कि प्राणायाम, और तीसरा है कि आप सद्गुरु सेवा में अपना समय दीजिए, तो वो जरूर उनकी कृपा होकर होगी और मन आपका शांत हो जाएगा।
धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपके प्रश्न के लिए और श्रीरंग जी आपके इस प्रश्न को लेने के लिए। एक और मुझे जो इसमें कुछ ऐड करना है वो ये है कि मुकेश जी, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आप स्वामी जी की फोटो अपने सामने रखें, और ऐसा बताया जाता है, और जैसे आप अपने भूमि पे, उपदिष्ट भूमि पर ध्यान करना शुरू करते हैं तो पहले कुछ सेकंड्स आप वहाँ पर स्वामी जी का ही ध्यान करें, और उनकी फोटो जैसे आप इमेजिन करें कि उस पॉइंट पर आप स्वामी जी का ही ध्यान करें, फिर धीरे धीरे आप अपने ध्यान में जाएं। तो ये भी बताया जाता है, जो आप अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद नीतू जी। हाँ, फोटो तो बिल्कुल रखते हैं सामने से और प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी स्ट्रगल रहती है, तो इसी से मैं सोच रहा कोई और भी तरीकेकार हो। बट आई थिंक सारी गुड पॉइंट्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। कोशिश जारी रहेगी, सब पे कृपा हो।
जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें चर्चा में अपने विचार रखने के लिए। तो अब समय को देखते हुए हम सत्संग के अगले पर्याय की तरफ बढ़ते हैं, जो है वॉरियर्स और इंडक्टीज ऑफ द वीक। हम सभी ये जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, लेकिन हम में से कई लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान जब कर लेते हैं तो वे ग्रुप पर अपना स्टेटस डन के रूप में भेज देते हैं। इसके लिए कोई ऑनलाइन सेशन नहीं है ज्वाइन करने के लिए, तो सभी अपने अपने आप ही साधना करते हैं। और हमारी टीम हर सप्ताह जो लोग अपना स्टेटस भेजते हैं उसके बेसिस पर वॉरियर्स और इंडक्टीज ऑफ द वीक की लिस्ट जनरेट करते हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया बताएं और हम आपको ऐड कर देंगे। तो इस सप्ताह के वॉरियर्स निम्नलिखित हैं, और ये वे शिष्य हैं, साधक हैं, जिन्होंने इस सप्ताह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है। मुकेश कुमार जी, तेजिंदर सहदेव जी, भगवती पटेल जी, प्राची क्षीरसागर जी, निरंजन कुमार जी, सूर्या आलम राजू जी, योगेश क्षीरसागर जी, श्रीरंग जी और सीमा जी। इंडक्टीज ऑफ द वीक वे साधक हैं जिन्होंने इस सप्ताह में साधना की है, लेकिन किसी कारणवश वे पूरा सप्ताह नहीं कर पाए हैं। हम देखते हैं कि ये सब नाम हमें हर सप्ताह मिलते हैं और हम इनसे प्रेरित होते हैं। इंडक्टीज ऑफ द वीक हैं लालमणि जी, राजकुमार गुप्ता जी, रंजनी जी, डे मिलर जी, अमित तालेकर जी, राधा जी, विजय कुमार जी, रश्मि जी, श्री राम साहू जी। आप सभी वॉरियर्स और इंडक्टीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और सद्गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप सभी इस अमूल्य समय का सदुपयोग करते रहें और हम सभी को प्रेरित करें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। शिखा जी से आग्रह है कि वे वंदना के अंतिम चार लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें।
जय सतगुरुदेव। वंदना प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है जिमिना दयाश्रित सिंधु के हैं विश्व पथ में कार्य है प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे आरती के अंतिम चार लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें, एवं आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आप सूर्या जी।
जय सद्गुरुदेव। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। श्वेत श्वेत मय श्वेत है श्वेत श्वेत मय श्वेत तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत अष्ट चक्र सब शून्य पर धर अधरा के पार तहा सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार भूली पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बैक टू यू मैम।
जय। धन्यवाद सूर्या जी। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए है। सूर्या जी से पुनः निवेदन है कि वे अंतिम चार लाइन से शांति पाठ करें। आप सूर्या जी।
शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांति मई शांति 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 ये न शांति हो पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांति मया शांति शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैत्री युग मैम नीतू जी।
जय। धन्यवाद सूर्या जी, धन्यवाद विनीता जी और सूर्या जी, आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना आरती एवं शांति पाठ किया और सत्संग को समापन की ओर ले गए। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। अब यहीं पर हम सत्संग को विराम देते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग से जुड़े हैं सभी को धन्यवाद तथा आपसे यह आग्रह है कि आज के सत्संग में हमने जो सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। और सद्गुरुदेव से यह प्रार्थना है कि वे हम सभी का साधन दृढ़ करें और हमें जो भी अपनी बुद्धि के धरातल से समझ में आया है, जो हमें और करने की जरूरत है, जो भी प्रयास हम और कर सकते हैं वो प्रयास हम कर पाए। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी गुरु भाई गुरु बहनों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। और उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रीरंग जी, राहुल जी, निरंजन जी, उत्कर्ष जी, सुधांशु जी, आनंद जी, रश्मि जी, तेजिंदर जी, मुकेश जी, विनीता जी, सूर्या जी, निरंजन कुमार जी और गीत जी। इस सेवा में आपने अपनी सेवा अर्पित की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा पिछले कुछ वर्षों से यूएस और नॉर्थ अमेरिका में वर्चुअल सत्संग आयोजित कर रहा है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप info@vihangamyoga.org पर ईमेल के रूप में भेज सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी जूम मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन और सप्ताह मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सतगुरुदेव।